एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि एक पहेली की तरह सुलझाई जाती है।
हाँ।
डेविड मिचेल का उपन्यास क्लाउड एटलस,
इसे अक्सर 21वीं सदी के सबसे साहसी उपन्यासों में से एक कहा जाता है।
और ये बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट भी हुआ था।
जी,
इसके लेखक डेविड मिचेल अपनी बहुत ही जटिल और आपस में जुड़ी कहानियों के लिए जाने जाते हैं,
और क्लाउड एटलस तो शायद उनकी कारीगरी का सबसे बेहतरीन नमूना है।
बिल्कुल। तो आज हम इसी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि इसकी बनावट इतनी अनोखी क्यों है, इसकी 6 अलग अलग दुनियाओं में झांकेंगे और उस धागे को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो समय के आर पार इन सभी कहानियों को एक साथ बांधता है।
इसे अक्सर एक साहित्यिक रूसी गुड़िया भी कहा जाता है।
रशियन नेस्टिंग डॉल,
हाँ,
जहां हर कहानी के भीतर एक और कहानी है।
और इस किताब को उठाते ही सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि इसे लिखा कैसे गया है।
सही बात है।
ये किसी आम उपन्यास की तरह शुरू होकर खत्म क्यों नहीं होती? इसकी बनावट ही अपने आप में एक रहस्य है।
6 कहानियां।
हाँ, 6 कहानियां जो 19वीं सदी से शुरू होती हैं, भविष्य के भी भविष्य तक जाती हैं।
और फिर एक अनोखे मोड़ से वापस लौट आती हैं।
बिल्कुल।
5 कहानियों को तो ठीक बीच रास्ते में रोक दिया जाता है और फिर उपन्यास के दूसरे हिस्से में उन्हें उल्टे क्रम में पूरा किया जाता है।
इसकी संरचना कुछ ऐसी है, ए बी सी डी ई एफ, और फिर एफ कहानी पूरी होने के बाद ई डी सी बी और ए को पूरा किया जाता है।
तो यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ मतलब स्टाइल के लिए है, एक मुश्किल बनावट,
या ये वाकई कहानी को कोई गहरा मतलब देती है?
हाँ,
मुझे लगता है ये सवाल इस उपन्यास के दिल तक जाता है, और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है।
अच्छा,
असल में यही बनावट हमें, यानी पढ़ने वाले को, वो महसूस करने पर मजबूर करती है जो किरदार महसूस कर रहे हैं, अधूरापन।
वाह,
जब कहानी में एक किरदार को किसी दूसरे की आधी अधूरी डायरी या चिट्ठियां मिलती हैं, तो हमें भी ठीक वैसा ही लगता है,
क्योंकि हमने भी उस किरदार की कहानी को बीच में ही छोड़ा है।
सही कहा, ये लेखक का एक मतलब एक जीनियस तरीका है पाठक को कहानी का हिस्सा बनाने का।
क्या बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलिए इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। एक और दिलचस्प बात जो इन सभी कहानियों को जोड़ती है, वो है एक निशान।
हाँ, लगभग सभी मुख्य किरदारों के शरीर पर एक धूमकेतु के आकार का जन्म चिन्ह है।
एक कॉमेट शेप्ड बर्थमार्क।
जी, ये एक तरह का आध्यात्मिक धागा है जो बताता है कि शायद ही एक ही आत्मा है जो अलग अलग युगों में अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर एक ही संघर्ष को जी रही है। हाँ, और हर किरदार का संघर्ष अपनी दुनिया में बहुत वास्तविक है। कहानी शुरू होती है 1849 में,
एडम इविंग से।
हाँ, एडम इविंग। वो एक भोला भाला अमेरिकी वकील है जो प्रशांत महासागर के द्वीपों से घर लौट रहा है,
और अपनी यात्रा में वो उपनिवेशवाद का सबसे घिनौना चेहरा देखता है।
बिल्कुल, कैसे ताकतवर लोग कमजोरों को जानवरों से भी बदतर समझते हैं।
और तो और, उसे धोखा भी दिया जा रहा है।
जी, जहाज पर मौजूद एक डॉक्टर हेनरी गूस दोस्ती का नाटक करके उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है ताकि उसका सामान लूट सके।
यानी कहानी की शुरुआत ही एक धोखे और क्रूरता से होती है,
पर यहीं पर इंसानियत की एक किरण भी दिखती है।
अच्छा,
बिल्कुल। ऑटुआ नाम का एक भगोड़ा मुरियोरी दास, जिसे सब जंगली समझते हैं, वो ही इविंग की जान बचाता है,
और ये अनुभव इविंग को पूरी तरह बदल देता है।
हाँ, और वो अमेरिका लौटकर दास्ता विरोधी आंदोलन का हिस्सा बनने का प्रण लेता है। उसकी ये यात्रा एक डायरी में दर्ज हो जाती है
जो किसी तरह समंदर पार कर यूरोप पहुंचती है,
और यहीं से दूसरी कहानी का बीज पड़ता है।
लगभग 80 साल बाद 1936 में, जी,
इविंग की डायरी को एक नौजवान संगीतकार पढ़ रहा है, रॉबर्ट फ्रोबिशर।
वो बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन उतना ही घमंडी और गैर जिम्मेदार भी।
सही कहा। अपने कर्जों से भागकर वो बेल्जियम पहुंचता है और एक बूढ़े मशहूर संगीतकार विवियन आयर्स के यहाँ असिस्टेंट बन जाता है,
और यहीं पर इविंग की डायरी से प्रेरित होकर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी धुन बनाता है,
क्लाउड एटलस सेक्सटेट। लेकिन उसकी कहानी का अंत बहुत दुखद है। आयर्स उसकी रचना चुराने की कोशिश करता है, समाज उसे स्वीकार नहीं करता,
और अंत में वो खुद को गोली मार लेता है।
हाँ, लेकिन मरने से पहले वो अपने प्रेमी को लिखे खतों में अपनी पूरी कहानी बयां कर देता है,
और ये खत ये अगली कड़ी बनते हैं।
जी,
सोचकर भी अजीब लगता है कि लुइजा रे, जो 1973 में कैलिफोर्निया में है, उसे ये भी नहीं पता कि जिस संगीत को सुनकर उसे हिम्मत मिल रही है,
वो एक ऐसे इंसान ने बनाया है जिसकी अपनी कहानी इतनी दुखद थी। ये कनेक्शन कितना छिपा हुआ और गहरा है।
सही कहा।
तो लुईसा रे एक जांबाज पत्रकार है जो एक बहुत बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहे भ्रष्टाचार के तह तक जाने की कोशिश कर रही है।
और उसे रॉबर्ट फ्रोबिशर के वो पत्र मिलते हैं।
हाँ, और उसकी धुन सुनाई देती है जो उसे एक अजीब सा एहसास दिलाती है। उसकी जान को खतरा है, कॉर्पोरेट गुंडे उसके पीछे पड़े हैं।
लेकिन वो हार नहीं मानती।
बिल्कुल नहीं, वो उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है और उसकी कहानी एक थ्रिलर उपन्यास की पांडुलिपि के रूप में हम तक पहुंचती है।
और उस पांडुलिपि को पढ़ रहा है हमारा अगला किरदार,
जो शायद इन सब में सबसे अनोखा है,
2000 के दशक का एक प्रकाशक, टिमोथी कैवेंडिश।
हाँ, बेचारे टिमोथी कैवेंडिश, एक घमंडी 65 साल का प्रकाशक
जो सोचता है कि वो एक लग्जरी होटल जा रहा है,
पर उसके भाई उसे धोखे से एक ऐसे नर्सिंग होम में फंसा देते हैं जहाँ से भागना नामुमकिन लगता है।
ये हिस्सा तो लगभग एक कॉमेडी फिल्म जैसा है।
सही कहा, यहाँ उपन्यास का भारीपन थोड़ा कम होता है और हमें एक मजेदार जेल ब्रेक कहानी देखने को मिलती है,
जहाँ कुछ बुजुर्ग मिलकर अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं।
जी,
यहाँ से उपन्यास एक लंबी छलांग लेता है और भविष्य में पहुँच जाता है,
सैकड़ों साल बाद, 2144 में,
और टिमोथी की कहानी पर बनी एक फिल्म को एक क्लोन देख रही है,
सोनमी 451। वो भविष्य के शहर नियो सियोल में एक फैब्रिकेंट है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया एक क्लोन,
जिसका काम एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ग्राहकों की सेवा करना है।
हाँ, उसे और उसके जैसे लाखों क्लोनों को ये सिखाया गया है कि 12 साल की सेवा के बाद उन्हें एक्सॉल्टेशन, यानी एक तरह का इनाम मिलेगा,
और वो एक खूबसूरत जगह पर जाएंगे।
लेकिन सोनमी में धीरे धीरे चेतना जागृत होती है और उसे पता चलता है कि सच्चाई कितनी भयानक है,
और यहाँ उपन्यास का पैमाना अचानक बहुत बड़ा हो जाता है।
बिल्कुल,
ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रहती, बल्कि पूरे सिस्टम, कॉर्पोरेट तानाशाही और इंसानियत के भविष्य की कहानी बन जाती है।
एकदम सही, सोनमी को पता चलता है कि एक्सॉल्टेशन का मतलब इनाम नहीं बल्कि मौत है।
क्या
उन क्लोनों को मारकर रिसाइकल किया जाता है और नए क्लोनों के लिए भोजन बना दिया जाता है।
हे भगवान।
ये जानने के बाद सोनमी एक क्रांति का प्रतीक बन जाती है। वो एक घोषणा पत्र रिकॉर्ड करती है
जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है।
हाँ, और फिर हम उपन्यास के केंद्र में पहुँचते हैं, एकमात्र पूरी कहानी जैकरी बेली की,
जो सर्वनाश के बाद के भविष्य में है। दुनिया तबाह हो चुकी है, सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं,
और इंसान फिर से कबीलों में जी रहा है। हाँ, जैकरी हवाई के एक ऐसे ही कबीले का सदस्य है जो डर और अंधविश्वास में जीता है,
और उनके कबीले की एक देवी है सोनमी।
जी, एक दिन उनके द्वीप पर मेरिनम नाम की एक महिला आती है जो प्रिसियंट्स नाम की एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता की सदस्य है,
और जैकरी को उसकी मदद करनी पड़ती है।
और इस सफर में उसे पता चलता है कि उसकी देवी सोनमी कोई देवी नहीं बल्कि उसी की तरह एक इंसान थी।
सोनमी की रिकॉर्ड की हुई गवाही जैकरी के लिए एक पवित्र ग्रंथ बन चुकी है।
बिल्कुल,
ये 6 कहानियां सुनने में कितनी अलग लगती हैं, है ना?
हाँ, बहुत अलग।
एक 19वीं सदी का वकील, भविष्य का एक क्लोन, एक बूढ़ा प्रकाशक, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो एक ही धागा इन सभी को पिरोता हुआ नजर आता है,
और वो धागा है शोषण का।
हाँ, उपन्यास में एक लाइन बार बार आती है, कमजोर मांस हैं और ताकतवर खाते हैं।
ये लाइन हर कहानी का सच है। डॉक्टर गूज एडम ईविंग के भोलेपन का फायदा उठाता है,
संगीतकार आईएस फ्रोबिशर की प्रतिभा का शोषण करता है,
कॉर्पोरेट बॉस लुईसा रे को चुप कराना चाहते हैं।
हाँ, नर्सिंग होम के कर्मचारी बुजुर्गों पर अत्याचार करते हैं,
और नियो सियोल का कॉर्पोरेट राज्य तो सोनमी जैसे हजारों क्लोनों को वस्तु की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है।
ये एक ही पैटर्न है जो सदियों से अलग अलग रूपों में दोहराया जा रहा है।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हर किरदार इस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ किसी न किसी रूप में विद्रोह करता है।
वो हार नहीं मानते,
कभी नहीं। ईविंग दास प्रथा के खिलाफ खड़ा होता है, लुईसा भ्रष्टाचार के खिलाफ, और सोनमी तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ चेतना की आवाज बन जाती है।
और शायद यहीं पर सोनमी का वो कथन आता है जो इस पूरे उपन्यास का दर्शन है।
हाँ, जब वो कहती है, हमारा जीवन हमारा अपना नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम दूसरों से, अतीत और भविष्य से बंधे हैं,
और हमारे हर अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं।
ये लाइनें रोंगटे खड़े कर देती हैं।
ये बताती हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे कर्मों की गूंज समय में यात्रा करती है।
तो इस शोषण और क्रूरता के चक्र को तोड़ने वाली ताकत क्या है?
वो कौन सी चीज है जो इन अलग अलग आत्माओं को जोड़ती है?
वो है कला और कहानी की ताकत।
अच्छा,
अगर हम देखें तो एक कहानी दूसरी कहानी को जन्म दे रही है। ईविंग की डायरी फ्रोबिशर को क्लाउड एटलस सेक्सेट लिखने के लिए प्रेरित करती है।
फ्रोबिशर के पत्र और संगीत लुइसा को हिम्मत देते हैं।
लुइसा की थ्रिलर कहानी कैविंडिश पढ़ता है।
कैविंडिश की जिंदगी पर बनी फिल्म सोनमी देखती है।
और अंत में सोनमी की गवाही ही जैकरी के कबीले के लिए एक पवित्र ग्रंथ बन जाती है।
मतलब सत्ता, साम्राज्य, सभ्यताएं, सब कुछ मिट जाता है,
लेकिन कहानियां और कला समय के पार भी जिंदा रहती हैं।
ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। उपन्यास हमें दिखाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है।
हाँ, सभ्यताएं बनती हैं, अपने शिखर पर पहुंचती हैं, और फिर अपनी ही लालच और क्रूरता के कारण नष्ट हो जाती है।
तो फिर इसमें उम्मीद कहाँ है? अगर सब कुछ एक निराशाजनक चक्र है, तो आशा की किरण क्या है?
मुझे लगता है उम्मीद किसी बड़ी क्रांति में नहीं, बल्कि एक इंसान के नैतिक साहस में छिपी है।
एक व्यक्ति के सही चुनाव में।
बिल्कुल। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण उपन्यास के अंत में मिलता है, जब एडम इविंग घर लौटता है
और अपने ससुर को बताता है कि वो दास्ता के खिलाफ लड़ेगा।
हाँ, और उसका ससुर उस पर हंसता है, कहता है कि तुम्हारी कोशिश तो अथाह सागर में एक बूंद जैसी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा।
और इविंग का जवाब इस पूरे उपन्यास का सार है।
हाँ, वो जवाब देता है, फिर भी बूंदों के समूह के अलावा कोई महासागर क्या है।
जी, येट वॉट इज एनी ओशन बट अ मल्टीट्यूड ऑफ ड्रॉप्स।
यस।
वाह, इस एक लाइन में कितनी गहराई है।
अन्याय और बुराई का साम्राज्य एक महासागर की तरह विशाल और डरावना लग सकता है।
हमें लग सकता है कि हमारा एक अच्छा काम, हमारी एक आवाज एक बूंद की तरह खो जाएगी।
लेकिन मिचेल हमें याद दिलाते हैं कि साहस और करुणा की हर एक बूंद मायने रखती है,
और जब ये बूंदें एक साथ मिलती हैं,
तो वो बदलाव का एक महासागर बना सकती हैं।
ये उपन्यास हमें सिखाता है कि हमारी पहचान सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है। हम उन अनगिनत जीवन का हिस्सा हैं जो हमसे पहले आए और जो हमारे बाद आएंगे।
आता है कि हमारा हर अच्छा या बुरा काम, हमारी हर दयालुता या क्रूरता वास्तव में हमारे भविष्य को जन्म देती है, एक ऐसी दुनिया बनाती है जिसमें आने वाली पीढ़ियां सांस लेंगी।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके ये गत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।